अध्याय तृतीय जातीय गतिशीलता के कुछ रूप। अब तक जो कुछ कहा गया है उससे संकेत मिलता है कि पश्चिमीकरण की पूरी संभावनाएं सचमुच भारत के लिए क्रांतिकारी हैं। यह बात कि पश्चिमीकरण सचमुच एक मूलभूत प्रक्रिया है, सतही और बाहरी नहीं, इससे प्रकट है कि अपने समाज के आधुनिकीकरण के महान कार्य का भार स्वयं भारती अभिजन ने संभाल लिया है। मेरी तो वास्तव में यह धारणा है कि स्वाधीनता प्राप्ति के बाद थोड़े से समय में देश के अभिजन ने जो परिवर्तन कर दिए हैं, वे कोई विदेशी समूह चाहे कितना सक्षम और योग्य हो नहीं कर सकता था। इन परिवर्तनों की नींव भारत में अंग्रेजी शासन की स्थापना और उसके प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष परिणामों से पड़ी थी। सबसे पहले तो अंग्रेजों द्वारा लाई गई नई औद्योगिकी ने संपूर्ण उपमहाद्वीप का प्रभावकारी प्रशासनिक और राजनीतिक एकीकरण संभव बनाया। यह प्रशासनिक और राजनीतिक एकीकरण देश भर में सड़कों के जाल, देशव्यापी आधुनिक अधिकारी तंत्र के निर्माण और एक रूप कानून व्यवस्था बनाने के लिए किए गए उपायों के बिना नहीं हो सकता था। इनके साथ साथ हर जगह स्थानीय युद्ध की समाप्ति, ठगी का अंत, दास प्रथा का नाश, भूमि के पट्टे संबंधी सुधारों का समावेश, चाय, कॉफी, कपास, तंबाकू और नील जैसी फसलों के लिए बागानों का प्रारंभ और कस्बों तथा नगरों का विकास, इन सब ने अंततः देश के आर्थिक विकास के लिए आधार तैयार किया। आधुनिक शिक्षा देने के लिए स्कूल, कॉलेजों की और अदालतों की स्थापना का कार्य, जो सिद्धांततः जाति और धर्म के भेदभाव के बिना सबके लिए थे, उसी प्रकार की अंग्रेज पूर्व संस्थाओं से स्पष्टतः भिन्न था। पश्चिमी साहित्य, राजनीतिक चिंतन, इतिहास और कानून के अध्ययन ने भारतीय अभिजन को कानून के समक्ष स्त्री पुरुषों की समानता और नागरिक अधिकार जैसे नए मूल्यों के लिए संवेदनशील बना दिया। यूरोपीय धर्म प्रचारकों द्वारा हिंदू धर्म अस्पृश्यता और जाति व्यवस्था की तीव्र आलोचना और उनके द्वारा चलाए गए स्कूल, अनाथालय और अस्पताल, इन सब ने पिछले 140 वर्षों में भारत में किए गए सामाजिक सुधारों में और पश्चिमीकरण के लिए अनुकूल सैद्धांतिक और नैतिक वातावरण तैयार करने में योग दिया है। मैं जानता हूँ कि उपयुक्त कथन में मैंने न केवल तथ्यों का अति सरलीकरण किया है बल्कि उसका कुछ आदर्शीकरण भी हो गया है, पर यहाँ मेरा मुख्य उद्देश्य केवल जाति व्यवस्था में सामाजिक गतिशीलता के विवेचन की पृष्ठभूमि प्रस्तुत करना है, अंग्रेजी राज का समीक्षात्मक मूल्यांकन नहीं। नए अवसर शैक्षिक, आर्थिक, राजनीतिक सिद्धांत में जाति निरपेक्ष थे, अर्थात वे सबके लिए खुले थे और किसी जाति, संप्रदाय या धर्म में जन्म लेने के कारण किसी का उनमें प्रवेश वर्जित न था। किंतु यथार्थतः जैसा कि मैं पहले कह चुका हूँ, वे साधारणतः ऊंची जातियों के लिए ही अधिक सुलभ थे, जिनकी पहले से ही विद्या, सरकारी नौकरी और शहरों में रहने की परंपरा थी। इसके अतिरिक्त प्रत्येक प्रदेश में कुछ जातियां ऐसी थीं जो बहुत ऊंची न मानी जाने पर भी अंग्रेजी राज में प्राप्त कुछ विशेष अवसरों का लाभ उठाकर अपेक्षा धनी हो गई थी। ऐसी सफलता के उदाहरण में पूर्वी भारत के तेली, उड़ीसा तथा अन्य स्थानों के कलवार, उत्तर प्रदेश के नोटिये, नोनिये, तटवर्ती गुजरात के कोली और सौराष्ट्र के खाराओं। बेली ने जिक्र किया है कि कैसे गंजम का एक हरिजन खाल और चमड़े का व्यापार करके, जिसके लिए आधुनिक संचार साधनों ने परंपरा से प्राप्त बाजार की अपेक्षा कहीं बड़ा बाजार सुलभ कर दिया था, स्थानीय पैमाने से धनी हो गया था। खाल और चमड़े का काम परंपरा से अछूत जातियां ही करती हैं और यह जाति के कारण एकाधिकार का अच्छा उदाहरण है। जब कोई नीची जाति धनी हो जाती है तो आमतौर पर वह अपनी जीवन शैली और कर्म कांड का संस्कृतिकरण करके ऊंची जाति होने का दावा करने लगती है। नोनिया, अहिर कलवार और दूसरी कई जातियों ने उच्च स्थिति का यह परिचित रास्ता अपनाया है। जैसा मैं अन्यत्र कह चुका हूँ, ऐसी गतिशीलता अछूत जातियों के लिए स्थानीय पैमाने से धनी हो जाने पर भी अत्यंत कठिन थी। संस्कृतिकरण ने नई अर्जित संपत्ति और निम्न कर्मकांडीय पद के बीच असामंजस्य मिट जाता था। भारतीय संदर्भ में उससे उत्तीर्ण होना संभव हो जाता था। नीची जाति की कभी कभी ऊर्ध्वमुख गतिशीलता के अन्य परिणाम का उल्लेख मैं करना चाहूंगा, जो दीर्घकालीन दृष्टि से शायद कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। उसका प्रदेश की तमाम नीची जातियों पर अर्थशास्त्रियों की भाषा में प्रदर्शनात्मक प्रभाव पड़ता था और तीव्रता पूर्वक उन्हें अनुभव करा देता था कि वे अपनी अवांछनीय स्थिति से बाहर निकल सकते हैं और अब तक उन्हें नीचा समझते रहे उनसे निपट सकते हैं। यह कुछ ऐसा ही था जैसे अचानक ही उन्हें लगा हो कि वे अब कैदी नहीं हैं। किंतु इस अपेक्षा अधिक सामान्य घटना के क्या प्रभाव पड़े कि ऊंची जातियां नई शिक्षा प्राप्त करके उसके द्वारा प्रतिष्ठादायक और ऊंचे वेतन वाले सरकारी तथा अन्य नौकरियां पा जाती थीं। सबसे पहले तो उनके और निचली जातियों के बीच सांस्कृतिक, सामाजिक और आर्थिक दूरी और बढ़ जाती थी। दूसरे, इससे वे उच्च जातियों को निम्न जातियों से अपनी भिन्नता पर बल देने का नया क्षेत्र मिलता था। निम्न जातियां भले ही अपनी जीवन शैली का संस्कृतिकरण कर ले, अंग्रेजी राज में संस्कृतिकरण पर कोई कानूनी रोक न होने से यह बहुत कठिन भी था, पर पश्चिमीकरण के लिए धन, समय, प्रयत्न और प्रभावशाली लोगों से संपर्क की आवश्यकता होती है। जहां तक निम्न जातियों का प्रश्न है, उनके लिए पश्चिमीकरण दोगुना वांछनीय हो गया। उससे ऐसी भी वस्तुएं सम्मिलित थी जो न केवल अपने आप में मूल्यवान थी, बल्कि जो उच्च जातियों के पास थी और उनके पास न थी। ऊंची जातियों के बराबर पहुंचने के लिए निरा संस्कृतिकरण पर्याप्त न था। इस भांति पश्चिम शिक्षा और केवल उसी के द्वारा उपलब्ध फल को प्राप्त करने के लिए उन्होंने और भी कमर कसी। शिक्षा और नए पेशों में उच्च जातियों की प्रधानता ने इस भांति पिछड़े वर्ग आंदोलन के लिए मुख्य हेतु प्रस्तुत कर दिया। यह आकस्मिक नहीं है कि यह आंदोलन दक्षिण भारत में सबसे प्रबल था, जहां वर्ग की दृष्टि से केवल एक जाति ब्राह्मणों की ही उच्च शिक्षा और सरकारी नौकरियों में प्रधानता थी। यही वह क्षेत्र भी है जहां ब्राह्मण और दूसरी जाति दूसरों के बीच सामाजिक और सांस्कृतिक खाई बहुत चौड़ी थी। सामाजिक गतिशीलता की इच्छा जाति समूहों के माध्यम से मुखर हुई। क्षैतिज एकीकरण में वृद्धि के कारण जो संचार साधनों में सुधार के साथ हुई, विस्तृत क्षेत्र में रहने वाली संबद्ध जातियां गतिशीलता की प्रक्रिया में खिंच आईं। देश के विभिन्न भागों में जाति संघ बनने लगे और प्रत्येक संघ ने अपनी जाति की सामाजिक और आर्थिक उन्नति को अपना लक्ष्य बनाया। बहुत से संघों ने जाति के कल्याण के लिए पत्रिकाएं प्रकाशित की, अपनी अपनी जाति के क्षेत्रों के लिए छात्रावास बनाने और उन्हें छात्रवृत्तियां प्रदान करने के लिए धन जमा किया और जाति के रीति रिवाजों में सुधार के कार्यक्रम अपनाए। इन सुधारों का उद्देश्य साधारणतः जीवन शैली और कर्मकांड का संस्कृतिकरण और कभी कभी विवाह और मृत्यु के अवसरों पर खर्च में कमी करना होता था। गतिशीलता संबंधी आकांक्षाएं स्थानीय जातियों में पहले से मौजूद प्रतिद्वंदिताओं से जुड़ गई। इसके परिणाम स्वरूप प्रतिद्वंदिताएं और भी तीव्र हुई। इस संदर्भ में ढांचे में अपने पड़ोसी से एक कदम आगे रहने की प्रवृत्ति और एकता की ओर सामान्य प्रवृत्ति में अंतर करना चाहिए। जहां एक जाति स्थानीय सोपान में अपने लिए ऊंची हैसियत के लिए संघर्ष करती थी, वहीं वह दूसरों के, विशेषकर अपने से नीची जातियों के ऊपर उठने के प्रयासों पर आपत्ति करती थी। उसके रवैये को संक्षेप में इस प्रकार रखा जा सकता है, जो अपने को मुझसे ऊंचा समझते हैं, उनके तो मैं बराबर हूँ। जो अपने को मेरे बराबर समझते हैं, उनसे मैं ऊंचा हूँ, और मुझसे नीचे वाले मेरी बराबरी की हिम्मत ही कैसे करते हैं। हिमालय क्षेत्र के शिरकंद गांव की स्थिति का जी बेरमैन द्वारा वर्णन संभवतः भारत के बहुत से भागों के बारे में सत्य है। शिरकंद में जो नीची जातियों के लोगों उच्च जातियों की बुराइयों की बड़ी धार्मिकता के साथ चर्चा करते, वे अपने से नीची जाति वालों के साथ उतना ही बुरा बर्ताव करते थे। किंतु ऐसी कोई निम्न जाति नहीं मिली जिसके सदस्य सोपान में अपने स्थान को बहुत गलत न समझते हों। पर ऊर्ध्व गति के लिए जातियों के सामान्य संघर्ष में निहित धारणा समानता की है। यह सच है कि किसान अपने को ब्राह्मण के समान कहता है, वह हरिजन के इस दावे से रुष्ट होता है कि वह किसान और ब्राह्मण के समान है। पर अंततः उच्च जातियों को यह मानना ही पड़ता है। आजकल देश के विभिन्न भागों से उच्च जातियों और अपने अधिकार का आग्रह करने वाले हरिजनों के बीच टक्कर होने के समाचार मिलते हैं, पर यह तो संविधान द्वारा हरिजनों को दिए गए अधिकारों के गांव के स्तर पर व्यवहार में यथार्थ होने की प्रक्रिया का ही अंग है। ज्यों ज्यों अधिकाधिक हरिजन शिक्षित होकर अपने संवैधानिक अधिकारों के लिए आग्रह करेंगे, वैसे ही वैसे स्थानीय टकरे घटने की बजाय बढ़ेंगी। नए अवसरों का लाभ उठाकर अपनी स्थिति में सुधार करने में जाति समूहों के स्वरूप में ही परिवर्तन होता जा रहा है। इस पर पिछले दिनों कुछ चर्चा भी हुई है, इस पर मैं बाद में विचार करूंगा। पर मैं इन सब लेखों की एक सामान्य धारणा का उल्लेख संक्षिप्त में करना चाहूंगा कि पारंपरिक व्यवस्था जड़ व्यवस्था है और उसमें कोई गतिशीलता संभव नहीं है। मैं इस धारणा को नहीं स्वीकार कर सकता। पहले अध्याय में मैंने यह दिखाने का प्रयत्न किया है कि पारंपरिक व्यवस्था में गतिशीलता आसान न होने पर भी संभव अवश्य थी और बीच बीच में सचमुच होती रहती थी। इस गतिशीलता का एक अत्यंत प्रबल साधन था व्यवस्था की राजनीतिक अस्थिरता। स्थानीय राजसत्ता प्राप्त करने वाली कोई भी जाति क्षेत्रीय होने का दावा कर सकती थी। दूसरे पारंपरिक भारत में राजा को जातियों को उठाने या गिराने का अधिकार था, और कभी कभी वह इस अधिकार का प्रयोग भी किसी जाति को पुरस्कार या दंड देने के लिए किया करता था। यह सही है कि राजा किसी जाति को उठाने या गिराने से पहले कानून जानने वाले ब्राह्मणों से परामर्श ले लेता था, पर इसका यही अर्थ है उसका यह अधिकार कुछ नियमों के अनुसार व्यवहार में आता था। तीसरे, अंग्रेज पूर्व भारत में ऐसी भूमि मौजूद होने से जिसे थोड़े से प्रयत्न से खेती के योग्य बनाया जा सकता था, स्थानीय परिस्थितियों से असंतुष्ट परिवारों को नए क्षेत्रों में जा बसने की सुविधा होती थी। बर्टन स्टीन का विचार है कि असंतुष्ट काश्तकारों के इस तरह चले जाने की संभावना शासकों की मनमानी पर कुछ अंकुश का काम करती थी। स्टीन के मध्य युग की खुली भूमि व्यवस्था में गतिशीलता की आधुनिक युग की गतिशीलता से जो एक संकीर्ण स्थानीय पद व्यवस्था में होती है तुलना की है, और यह दलील रखी है कि भारत की बड़ी बड़ी किसान जातियों के विभाजन मध्ययुगीन गतिशीलता से उत्पन्न हुई है। जैसा पहले कहा गया है, संस्कृतिकरण से उन निम्न जातियों को जिन्होंने धन या राजनीतिक सत्ता प्राप्त कर ली है, अपनी निम्न कर्मकांडी स्थिति को छोड़कर उच्च जातियों में गिने जाने में सहायता मिलती है। किंतु हम यह बात याद कर सकते हैं कि पारंपरिक व्यवस्था में अकेले जाति की ऊपर या नीचे गति संभव होने पर भी स्वयं व्यवस्था अपरिवर्तित रहती थी। दूसरे शब्दों में केवल पद मूलक परिवर्तन होता था, संरचना मूलक परिवर्तन नहीं। पारंपरिक अथवा अंग्रेज पूर्व समाज को कुल मिलाकर धार्मिक समाज माना जा सकता है। जब ब्रिटेन द्वारा विजय के बाद से आधुनिक भारत निरंतर अधिकाधिक लौकिकीकरण का अनुभव करता रहा है, धार्मिक मूल्य व्यापक भी थे और प्रमुख भी, और राजा के ऊपर यह चरम उत्तरदायित्व था कि वह जाति भेद को लागू करे और जाति के मामलों में विवाह होने पर फैसला भी करे। पारंपरिक भारत में संस्कृतिकरण महत्वाकांक्षी जाति के लिए न केवल बहुत बहुत महत्वपूर्ण थी बल्कि उसे प्राप्त करना कठिन भी था, क्योंकि द्विज जातियों के कर्मकांड और जीवन शैली को अपनाने के विरुद्ध धार्मिक और कानूनी दोनों ही प्रकार के प्रतिबंध थे। अंग्रेजों द्वारा संस्कृतिकरण पर रोक लगाना, अस्वीकार करना करने से सिद्धांत वह सबके लिए सुलभ हो गया। यद्यपि हर जगह स्थानीय प्रभु जातियां प्रायः किसी निम्न जाति को ऊपर उठने से रोकने के लिए अक्सर ऐसे प्रतिबंधों का बहिष्कार और मारपीट का प्रयोग करती थी जो उन्हें फिर भी उपलब्ध थे, पर स्थान मूलक गतिशीलता और नागरिककरण में वृद्धि के साथ साथ और शिक्षा तथा रोजगार के नए अवसरों के अधिकाधिक जातियों द्वारा उपयोग के फलस्वरूप प्रभु जाति द्वारा बहिष्कार और मारपीट का भय यदि मिटा नहीं तो कम अवश्य हो गया, किंतु जातियां संस्कृतिकरण को अन्य तथा अधिक महत्वपूर्ण बातों का जैसे शिक्षा प्रतिष्ठा पूर्ण नौकरी और राजनीतिक अधिकार का अनुलग्न तत्व समझने लगी। उन्होंने यह भी देखा कि जाति की स्थिति के को उठाने के लिए केवल संस्कृतिकरण का मूल्य बहुत सीमित है। इसका स्पष्ट उदाहरण है पिछड़ा वर्ग आंदोलन, जिस पर मैं आगे विचार करूंगा। पिछड़ी हुई जातियों में गतिशीलता की व्यापक इच्छा का संकेत एक असामान्य स्रोत से जनगणना के कार्य से मिलता है। सर्वप्रथम देशव्यापी जनगणना 1867 से 1871 में हुई थी और इस अवसर पर दो तमिल किसान जातियां बिल्लाल और पड़ैयाची चाहती थी कि समाज में जो वर्ण उन्हें प्राप्त है उससे ऊंचे वर्ण में उन्हें सम्मिलित किया जाए। बिल्लालों का विरोध शूद्रों में सम्मिलित किए जाने के विरुद्ध था और वे चाहते थे कि उन्हें वैश्य कहा जाए। पड़ैयाची वन्नीय कुल क्षत्रिय कहलाना चाहते थे। 20 वर्ष बाद पड़ैयाची दावे के समर्थन में वन्नीय कुल बिलक्कम नामक एक पुस्तक भी लिखी गई। जातियों द्वारा गतिशीलता के लिए जनगणना का कार्य का लाभ उठाने की यह प्रवृत्ति 1901 की जनगणना के समय तक बहुत व्यापक हो गई। उसमें जनगणना आयुक्त सर हर्बर्ट रिजले ने जनगणना में प्रत्येक जाति को स्थानीय सोपान में पद और उसका वर्ण संबंध ठीक ठीक अंकित किए जाने का निर्णय किया। इस निर्णय का परिणाम जो भी स्थानीय स्तर पर जाति व्यवस्था की गति की जानकारी रखते थे वे पहले से ही बता सकते थे कि घुरे के शब्दों में बहुत से महत्वाकांक्षी जातियों ने अपना स्थान ऊंचा करने के मौकों को फौरन भाप लिया। उन्होंने अपने सदस्यों के सम्मेलन किए और इसका प्रबंध करने के लिए पंचायतें बना ली और उसका स्थान उसी तरह लिखा जाए जो उनकी दृष्टि से उनके गौरव के अनुकूल हो। दूसरे कुछ लोग जिनकी प्रगति के इस चोरी के रास्ते से रुष्ट होना स्वाभाविक था उतनी ही तत्परता से उनके दावों का खंडन करने लगे। इस भांति परस्पर आरोप प्रत्यारोप का आंदोलन उठ खड़ा हुआ। उच्चतम जातियों को छोड़कर बाकी सब जातियों के नेता खुल्लम खुल्ला जनगणना को अपने उन सामाजिक दावों पर आग्रह करने और शायद कुछ मान्यता प्राप्त कर लेने का अवसर मानते थे जो अपने से ऊंची जाति के लिए लोग उन्हें देते न थे। यह कहा जा सकता है कि ऐतिहासिक दायित्व भारतीय शासकों के पास था कि अपने अधिकार क्षेत्र में जातियों के पद निर्धारण का चरम निर्णय कर सके और जातियों की पदोन्नति या औन्नति कर सके। वह अब जनता के नए शासकों को सौंप रही थी और जनगणना में जातियों के पदों को अस्वीकार जाति विशेष अथवा जातियों का स्थान अधिकार और पद की घोषणा करने वाले पारंपरिक ताम पत्रों का समानार्थी हो गया। जनगणना में उच्चतर जाति के रूप में घोषित किए जाने के दावे करने की प्रवृत्ति समय के साथ बढ़ती गई और अधिकाधिक लोग जाति की गतिशीलता एक नए और सरकारी माध्यम के अस्तित्व के बारे में सजग हो गए। ओमैली ने लिखा है कि 1911 के जनगणना कार्य के समय बंगाल में यह आम धारणा थी कि जनगणना का उद्देश्य यह दिखाना नहीं है कि हर जाति में कितने लोग हैं, बल्कि विभिन्न जातियों की आपेक्षिक स्थिति निश्चित करना और सामाजिक श्रेष्ठता के प्रश्नों को तय करना है। इस विषय में लोगों की भावना अधिकतर इस बात का परिणाम है कि पिछली जनगणना रिपोर्ट में विभिन्न जातियों का सामाजिक प्राथमिकता के आधार पर वर्गीकरण किया गया था। प्राथमिकता की इस प्रमाण ने 1911 में जब जनगणना का कार्य शुरू हुआ तो बहुत विक्षोभ उत्पन्न किया। विभिन्न जातियों से सैकड़ों याचिकाएं प्राप्त हुई, उनका केवल वजन ही 1.5 मन है, जिनमें यह अनुरोध था कि उनका नया नाम दर्ज किया जाए, प्राथमिकता कम में उन्हें ऊपर स्थान दिया जाए, उन्हें क्षत्रिय या वैश्य माना जाए इत्यादि। बहुत सी जातियां उन्हें दिए गए स्थान से क्षुब्ध थी और उनकी शिकायतें थी कि उससे उनकी सार्वजनिक मान हानि हुई है, काले अक्षरों में छपा। धीरे धीरे यह प्रवृत्ति इतनी बढ़ गई कि 1941 की जनगणना के समय अंग्रेज जनगणना आयुक्त ने जाति विषय कालम ही उड़ा दिया। दावा करने का ढंग लगभग घिसा पिटा होता था। दावे के समर्थन में जाति समूह का धंधा, जीवन शैली अथवा नाम बताया जाता। जाति के नाम की किसी सम्मानित जाति या जनजाति के ऐतिहासिक नाम से समानता की ओर इशारा किया जाता। उस जाति के उद्गम से जुड़ी हुई गाथा लिखी जाती और किसी पौराणिक योद्धा अथवा दैवी या अर्ध दैवी व्यक्ति से संबंध पर जोर दिया जाता। इस भांति मैसूर के वेद रामायण महाकाव्य के प्रसिद्ध रचयिता वाल्मीकि से संबंध का दावा करते थे, जिनके बारे में यह किंवदंती है कि वे शिकारी थे। इसी प्रकार पशुपालक कुरूब अपनी जाति के इतिहास को संस्कृत के महाकवि और नाटककार कालिदास से जोड़ते थे, जिनके बारे में यह माना जाता है कि वे जाति से पशुपालक थे। हिंदू धर्म शास्त्रों का भी हवाला दिया जाता और दावे को बल देने के लिए कुछ संस्कृत उद्धरण भी डाल दिए जाते। उत्तर प्रदेश में महत्वाकांक्षी दावेदार ऐसे कृपालु ब्राह्मण पंडित भी जुटा लेते थे जो ऐसी अवस्था ढूंढ निकालने की अमुक जाति सचमुच ऊंची है व्यवस्था के बाद उसी प्रकार के प्रमाण दिए जाते जिनका उल्लेख ऊपर हो चुका है। प्रारंभ में जनगणना में उच्च जाति के रूप में दर्ज किए जाने की मांग संबद्ध जाति समूहों के नेताओं द्वारा होती थी, जिसके परिणाम स्वरूप कुछ मामलों में बड़ी गड़बड़ी फैली, क्योंकि एक ही जाति की विभिन्न प्रशाखाएं अलग अलग स्थानों में अलग अलग वर्णों का दावा करती थी और एक ही जाति हर जनगणना में अपना दावा बदल देती थी। जाति सभाओं अथवा जाति संघों के बनने से ऐसी भूले होने की संभावना कम तो हुई, यद्यपि पूरी तरह दूर नहीं हुई। ऐसी सभाएं पहले भी अज्ञात नहीं थी और 1901 की जनगणना ने उन्हें लोकप्रिय बना दिया। 1911 में मद्रास सहित कई क्षेत्रों में बहुत सी जाति सभाएं थी और अगली जनगणना के समय तक, जो 1919 तक भारत सरकार अधिनियम स्वीकृत होने के बाद पड़ी, वे अखिल भारतीय घटना बन गई थी। जाति सभाओं ने गतिशीलता की नई प्रेरणा को प्रकट भी किया और संगठित भी। उन्होंने जनगणना अधिकारियों को अलग अलग जातियों के निचले वर्ण की बजाय किसी विशेष वर्ण में रखे जाने की मांग प्रस्तुत की। उदाहरण के लिए 1931 की उत्तर प्रदेश की जनगणना के अधीक्षक को 175 दावे प्राप्त हुए थे, जिनमें से 34 जाति सभाओं द्वारा आए थे। 1931 की जनगणना के कुछ एक उत्तर भारतीय क्षेत्रों में प्राप्त दावों के विश्लेषण से पता चलता है कि दूसरे सभाओं ने अपनी अपनी जातियों की जीवन शैली संस्कृतिकरण की दिशा में बदली। इसमें प्रायः वर्जित मांस का, मुर्गी सुअर और गाय की मांस का तथा शराब का त्याग करना और यज्ञोपवीत धारण करना पड़ता था और उत्तर प्रदेश तथा बिहार में सूतक का समय कम करके द्विज जातियों के अनुरूप बनाना पड़ता था। बहुत नीची जातियों को बेगार अथवा अन्य निःशुल्क श्रम पालकी ले जाना या समारोह के अवसरों पर ढोल बजाना जैसे पारस्परिक हीन लोगों द्वारा ऐसे सुधार के प्रयासों के विषय में प्रतिक्रिया कई प्रकार की होती थी, जिसमें एक छोर पर उदासीनता से लगाकर दूसरे छोर पर काम करने और नए बाबुओं को ठिकाने रखने के उद्देश्य से की गई मारपीट तक सभी कुछ शामिल था। इस भांति उत्तर बिहार के राजपूतों और भूमिहार ब्राह्मणों ने क्षत्रिय होने का दावा करने वाले और यज्ञोपवीत पहनने वाले अहिरों को मारा पीटा था। उदाहरण के लिए कटक और बलसोर में गौर यदुवंशी क्षत्रियों के रूप में मान्यता पाने का प्रयास कर रहे थे। उन्होंने न केवल यज्ञोपवीत पहन लिया बल्कि पालकी उठाने का काम करने से इनकार किया। अपने पारंपरिक धंधे को छोड़ने के उनके प्रयत्न का अन्य जातियों ने विरोध किया। खड़ैतों और कर्णों से जो स्थानीय निवासियों में आम तौर पर सबसे अधिक प्रभावशाली और संपन्न थे विरोध का नेतृत्व किया और इस प्रतिद्वंदिता ने कई स्थानों पर बढ़कर सचमुच दंगों का रूप ले लिया। ऐसी ही स्थितियां कई अन्य स्थानों में भी पैदा हुई। जातियों में तीव्रतर आत्म चेतना और जाति सभाओं की स्थापना के परिणाम स्वरूप जातियों के क्षैतिज प्रसार में वृद्धि हुई। क्षैतिज प्रसार का अच्छा उदाहरण अहिरों का है जिन्होंने 1912 में गोप जाति सभा स्थापित की जिसमें कुछ ही वर्षों में पंजाब से लगाकर बंगाल तक समस्त उत्तर भारत के गोपालक जातियां शामिल हो गईं। सभा संयुक्त प्रांत में मैनपुरी से अहिर समाचार नामक एक मासिक पत्र भी प्रकाशित करती थी। उसके वार्षिक अधिवेशन में उत्तर भारत के विभिन्न भागों से हजारों अहिर सम्मिलित होते थे। इनमें विभिन्न गोपालक जातियों के बीच एक साथ खान पान का भी प्रारंभ किया। संक्षेप में जनगणना को जातियों के पद को स्थिर करने के लिए प्रयोग प्रयास का उल्टा असर हुआ जिससे गतिशीलता को प्रेरणा मिली और अंतरजातीय प्रतिद्वंदिता बढ़ गई। इसलिए कोई आश्चर्य नहीं है कि राष्ट्रवादी भारतीय यह मानने लगे कि जनगणना में जाति के उल्लेख के पीछे अंग्रेज साम्राज्यवादियों का भारतीय समाज में पहले से ही मौजूद विभाजनों को बढ़ाने का नहीं तो कम से कम बनाए रखने का शैतानी षड्यंत्र था। 1911 की जनगणना कार्य में अछूतों और कुछ हिंदुओं को अलग रखने के प्रयास से उनकी आशंकाएं और भी दृढ़ हुई। इसके अतिरिक्त जहां पिछली जनगणना रिपोर्टों में न केवल हिंदुओं में बल्कि मुसलमानों और ईसाइयों में भी जातिगत विभाजनों को अंकित किया गया था वहां परवर्ती रिपोर्टों में केवल हिंदुओं और विभाजनों का को अंकित किया गया। इससे राष्ट्रवादियों को की बुरी से बुरी आकांक्षाओं को पुष्ट किया। चौथे दशक में राष्ट्रीयता में तीव्र वृद्धि हुई। भारतीय राष्ट्रवादी न केवल जनगणना में जातियों का उल्लेख करने के बल्कि इस बात के भी विरुद्ध थे कि 1935 के भारत सरकार अधिनियम में उन क्षेत्रों को सार्वजनिक नियंत्रण से बाहर रखा गया था जिनमें मुख्यतया जनजातियां रहती थी। अब मैं संक्षेप में पिछले वर्ग आंदोलन की चर्चा करूंगा। पिछले वर्गों में जागृति के चिन्ह देश के हर भाग में पाए जाते हैं और भारत के अध्येता समाज वैज्ञानिकों के सामने यह तात्कालिक कार्य है कि इस आंदोलन के जो आधुनिक भारत के सामाजिक सैद्धांतिक और राजनीतिक इतिहास का इतना महत्वपूर्ण अंग है सप्रमाण विवरण प्राप्त किए जाए। यद्यपि यह आंदोलन दक्षिण भारत में बहुत प्रबल और तमिल प्रदेश इसका गढ़ था और किसी हद तक आज भी है किंतु अन्य स्थानों पर भी कभी कभी अन्य आंदोलनों में छिपकर प्रकट हुआ। उदाहरण के लिए बंगाल में भी जहां जाति भावना क्षीण मानी जाती है योगियों के नाम शूद्रों में इस शताब्दी के प्रारंभ में अपनी स्थिति सुधारने की बड़ी तीव्र इच्छा दिखाई पड़ी थी। अपने परवर्ती चरण में 1911 के आसपास उत्तर भारत के आर्य समाज आंदोलन ने पंजाब और उत्तर प्रदेश के कुछ नीच जातियों को बहुत आकर्षित किया था। समाज ने शुद्ध आंदोलन का प्रारंभ किया जिससे निचली जातियों को दूसरे धर्म ग्रहण करने से रोका था और जो धर्म परिवर्तित कर चुके थे उनका फिर से उद्धार हो सके। पंजाब में शुद्धि आंदोलन द्वारा अछूतों की स्थिति सुधारने के लिए एक अलग समाज की स्थापना की गई। हाल के देहातों के अध्ययन से पता चला है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के आर्य समाज ने हरिजनों को निश्चित ही आकर्षित किया था। बिहार और उड़ीसा में कुर्मी ग्वाले और मुसहर जैसी निम्न जातियों को प्रबल रूप से आकर्षित किया। सिख धर्म में भी कई नीची जातियों को गतिशीलता का रास्ता मिला। अकाली आंदोलन की धर्म परिवर्तनकारी गतिविधियों ने बहुत से लोगों को विशेषकर मेहतरों को वापस हिंदू होने की बजाय सिख बनने को प्रवृत्त किया। नीची जातियों के लोगों दस्तकार और दूसरे कामों में लगे समूहों को स्पष्ट ही लगता था कि हिंदू के बजाय सिख बनते ही उनका दर्जा ऊंचा हो जाता है। उदाहरण के लिए एक माली की जिनकी कुल संख्या 1931 में बहुत घटा बढ़ी दिखाई पड़ी सिख होते ही प्रतिष्ठा बढ़ जाती थी क्योंकि माली जाति स्पष्ट ही नीची है। इसी प्रकार जालंधर और होशियारपुर के हिंदू जाट को उसके हिंदू राजपूत पड़ोसी नीची दृष्टि से देखते थे इसलिए वह सिख हो जाता था। दूसरी ओर प्रांत के दक्षिण पूर्व में हिंदू जाट को अपनी जाति पर गर्व था बल्कि वह ब्राह्मण को भी नीचा समझता था क्योंकि इस क्षेत्र में ब्राह्मण पुरोहित नहीं काश्तकार थे। ऐसे ही प्रभाव तरखान लुहार नाई सुनार आदि जातियों के बारे में भी सक्रिय थे।
गुजरात की बड़ी भूमिधर जाति पाटीदार पिछले 250 वर्षों से विशेषकर 19वीं शताब्दी के अंतिम वर्षों में जाति और वर्ग सोपान में ऊपर चढ़ती रही है। 1947 के बाद से नीची किंतु बहुसंख्यक कोली वारियां जातियों में बड़ी हलचल रही है और वे राजनीतिक सत्ता प्राप्त करके सामाजिक गतिशीलता का प्रयास कर रही हैं। इसके साथ ही उसमें पारंपरिक मालिकों और पाटीदारों के प्रति बहुत विद्वेष है। गोदावरी नदी के दक्षिण में हैदराबाद और केरल के कुछ भागों को छोड़कर 1950 तक ब्राह्मणों के सिवा सभी जातियां पिछड़ी हुई की कोटि में एकजुट गिनी जाती थी। वास्तव में ब्राह्मणवाद के विरोध में एक ऐसा अत्यंत पंचमेल समूह एकजुट हो गया था जिसमें विभिन्न भाषा क्षेत्रों की बहुत सारी जातियां मुसलमान, ईसाई और पारसी तक सम्मिलित थी। इस आंदोलन का सैद्धांतिक केंद्र था मद्रास नगर, यद्यपि अन्य गौर केंद्र भी थे जैसे मदुरा, कल्लड़, कुरीची, चिदम्बरम, बंगलुरु, कोल्हापुर और पूना। भूतपूर्व मद्रास प्रेसिडेंसी के संयुक्त स्वरूप के कारण नई विचारधारा के बीच सारे दक्षिण भारत में फैलने की सुविधा हुई। पुराने मद्रास में तमिल तेलुगु क्षेत्रों के अलावा मलयालम और कन्नड़ भाषी क्षेत्रों के भी कुछ भाग सम्मिलित थे, इसलिए विचार मद्रास से दक्षिण भारत के अन्य भागों में शीघ्रता से फैल सकते हैं। स्वाधीनता पूर्व काल में दक्षिण भारत के जीवन में मद्रास की सांस्कृतिक और बौद्धिक प्रमुखता के कारण सारे दक्षिण भारत में शिक्षित वर्ग के ऐसे समूह बन गए थे जो नेतृत्व के लिए उसी प्रकार मद्रास की ओर ताकते थे जिस प्रकार पश्चिमी भारत बंबई की ओर ताकता था। महाराष्ट्र का गैर ब्राह्मण आंदोलन संपूर्णतः तो नहीं पर अधिकतर स्वायत्त था और दोनों क्षेत्रों में नेता परस्पर संपर्क बनाए रखते थे। कुछ क्षेत्रों में ब्राह्मण की प्रधानता दक्षिण भारत में सर्वसामान्य होने पर भी तमिलनाडु में वह विशेष रूप से प्रबल है। दक्षिण भारत के अन्य ब्राह्मणों की भांति तमिल ब्राह्मणों में भी विद्वानों की विद्वता की परंपरा है, पर उनकी विशिष्टता यह थी कि अंग्रेजी शिक्षा के बारे में भी वे मद्रास प्रेसिडेंसी में गैर तमिल ब्राह्मणों सहित अन्य सभी के आगे थे। बेतील ने कहा है कि मद्रास में 1892 में 1904 के बीच ICS में सफल 16 प्रत्याशियों में से 15 ब्राह्मण थे। 1913 में 128 जिला मुंशिकों में से 93 ब्राह्मण थे और 1914 में विश्वविद्यालय के 650 पंजीकृत स्नातकों में से 452 ब्राह्मण थे। 1918 में प्रेसिडेंसी में कुल 4,20,00,000 की आबादी में ब्राह्मणों की संख्या 15,00,000 थी, पर 70% कला के स्नातक, 74% कानून के स्नातक, 71% इंजीनियरी के स्नातक और 74% शिक्षा में के स्नातक ब्राह्मण थे। शिक्षा विभाग में 390 ऊंची नौकरियों में से 310 न्याय विभाग में, 171 में से 116 राजस्व विभाग में, 679 में से 394 ब्राह्मणों के कब्जे में थी। किंतु इससे यह निष्कर्ष निकालना गलत होगा कि सभी गैर ब्राह्मण जातियां आर्थिक या राजनीतिक दृष्टि से कमजोर थी। न केवल उनकी कुल संख्या ब्राह्मणों से बहुत अधिक थी बल्कि उनमें से देहातों में प्रबल प्रभु जातियों के बहुत से सदस्य भूस्वामी थे। इस चिक के अनुसार प्रेसिडेंसी के जमींदार गैर ब्राह्मण थे और बेतील ने कहा है कि तंजौर जैसे जिले में भी जहां ब्राह्मण भूस्वामियों का सबसे अधिक जमाव था, ऊपरी सीमा निश्चित होने से के पहले 3 सबसे बड़े भूस्वामी गैर ब्राह्मण थे। प्रभुता संपन्न किसान जातियां गांव और तहसील के स्तर पर पर्याप्त राजनीतिक और आर्थिक अधिकारों का उपभोग करती थी। शहरी क्षेत्रों में अनाज, कपड़ा, किराना और जवाहरात के व्यापार पर गैर ब्राह्मणों का कब्जा था। इर्शचिक ने बताया है कि 1911 में जहां ब्राह्मणों के पास कुल 35 कारखाने थे, वहां बलीज, नायडू, कापू, कोमती, बिल्लाल और काटुकोटी, चिट्टी जैसी गैर ब्राह्मण जातियों को 91 कारखानों पर स्वामित्व था। केवल अंग्रेजी शिक्षा और उसके मिलने वाले लाभों के संदर्भ में ही ब्राह्मणों को दूसरों से बहुत अधिक श्रेष्ठता प्राप्त थी। ब्राह्मणों की प्रमुखता राष्ट्रीय आंदोलन में भी थी, यद्यपि बंगाल और बंबई की तुलना में राष्ट्रीय भावना मद्रास में देर से पहुंची। उदाहरण के लिए गैर ब्राह्मणों के घोषणा पत्र दिसंबर 1916 में लिखा था कि मद्रास प्रेसिडेंसी से अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के लिए निर्वाचित 15 सदस्यों में से केवल एक ही गैर ब्राह्मण थे। 31 किंतु मद्रास कांग्रेस में बहुत से गैर ब्राह्मण नेता थे और 1916 में जस्टिस पार्टी की स्थापना के बाद उन्होंने मिलकर मद्रास प्रेसिडेंसी संघ की स्थापना की थी। होम रूल के लिए राष्ट्रीय मांग का समर्थन करने के साथ साथ गैर ब्राह्मण हितों की रक्षा के लिए सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की मांग करता था।
ब्राह्मणों की प्रधानता का विरोध नीची और दलित जातियों द्वारा नहीं बल्कि तेलुगु प्रदेश की कर्म और रेड्डी तमिल देश की बिल्लाल और केरल की नायर जैसी शक्तिशाली किसान प्रभु जातियों के नेताओं द्वारा हुआ था। इर्शचिक के अनुसार इस बात पर ध्यान देना आवश्यक है कि गैर ब्राह्मण चाहे उत्तर तेलुगु क्षेत्रों के हों या चाहे घरेलू तमिल क्षेत्रों के उच्च जाति के समूहों के थे जिनका जातिगत स्थान ब्राह्मणों से नीचे ठीक नीचे था, जिनकी गैर ब्राह्मण जातियों में सामाजिक प्रतिष्ठा की स्थिति थी और जिनमें अंग्रेजी पढ़े लिखे लोगों की संख्या अपेक्षा ऊंची थी, उन्हें हरिजनों अथवा अन्य नीची जातियों का प्रतिनिधि मानना संभव नहीं। वास्तव में गांव के स्तर पर ब्राह्मणों के साथ वे भी हरिजन मजदूरों के शोषक ही थे। पिछले वर्ग आंदोलन ने प्रारंभिक दिनों में ही अपनी अलग कल्प कथाएं बना ली थी। ब्राह्मणों के आर्यों के साथ और तमिल के मूल द्रविड़ ब्राह्मण द्रविड़ भाषा के साथ तादात्म्य संबंधी तात्कालीन विचार वितर्क से लाभ उठाकर गैर ब्राह्मण जातियों के नेताओं ने एक लंबा चौड़ा सिद्धांत की रच डाला और शताब्दियों से ब्राह्मण की नीची धूर्तता पर पूर्ण ही रही है। ब्राह्मण आक्रमणकारी ही गर्हित जाति प्रथा को भारत में लाया और उसने अपने लिए अनुकूल नियम कायदे बनाकर और इससे निंद्य वर्ण आश्रम धर्म और मोक्ष की धारणाओं में लोगों की बुद्धि को जकड़कर समाज पर अपना शिकंजा और मजबूत करने में अपनी अत्यधिक प्रतिष्ठा और सत्ता का दुरुपयोग किया। सुधारवादी वक्ता आज भी जाति व्यवस्था के अन्याय और ब्राह्मणों द्वारा थोपी गई विषमताओं को दिखाने के लिए हिंदू धर्म शास्त्रों का विशेषकर मनुस्मृति का हवाला देते हैं। यह मान लिया जाता है कि मनु के लेखन में उस युग के भारत के सभी स्थानों की परिस्थितियों का ठीक ठीक वर्णन है। मूल द्रविड़ समाज जिसके गौरवपूर्ण तमिल साहित्य की सृष्टि की ब्राह्मणों के आकार सबसे ऊपर अपना प्रभुत्व स्थापित करके और द्रविड़ संस्कृति के दमन के पहले जाति मुक्त था, इश्विच के अनुसार तमिल गैर ब्राह्मण के लिए अपने द्रविड़ का मूल नाम लेने के लाभ अनेक थे। 20वीं शताब्दी के उत्तर दशक तक यह सांस्कृतिक प्राकल्पना बहु विदित हो चुकी थी कि तमिल संस्कृति आर्य संस्कृति से पुरानी है। इस प्राकल्पना के सांस्कृतिक पक्ष को एक सामाजिक और राजनीतिक महत्व भी मिल गया था क्योंकि उसके द्वारा आर्य ब्राह्मणों को एक ऐसा आक्रांता और अपहरणकर्ता के रूप में दिखाया जा सकता था जिन्होंने विजित लोगों को दास बनाने के लिए उस समाज में जाति व्यवस्था का समावेश किया कर दिया जो पहले वर्गहीन थे। तमिल देश में ब्राह्मणों की विदेशी रूप में निंदा गैर ब्राह्मणों द्वारा ब्राह्मणों को पछाड़ने का एक साधन बन गई, पर साथ ही साथ द्रविड़ उद्गम की कल्पकथा के प्रचार से तमिल गैर ब्राह्मण उच्च जातीय हिंदुओं को एक आत्म परिचय भी प्राप्त हुआ जो आर्य ब्राह्मणवाद से स्वतंत्र था और सांस्कृतिक आत्मविश्वास की भावना भी मिली जिसका बाद में इस नए अभिजन के निर्माण में महत्वपूर्ण योग दिया। शताब्दियों से ब्राह्मण नियमित रूप से दूसरों का शोषण करते आए थे, इसी कारण वे शिक्षा और नौकरियों के मामले में और राष्ट्रीय आंदोलन के नेतृत्व में दूसरे से बहुत आगे बढ़ गए थे। भारतीय समाज में के निरंतर दलित होने वाले वर्गों को अब नए अवसरों में अपना भाग प्राप्त करने के लिए यह आवश्यक था कि कम से कम कुछ समय के लिए कुछ उन्हें रियायतें और विशेषकर विशेषाधिकार मिले। इसमें ब्राह्मणों के विरुद्ध भेदभाव अनिवार्य था, पर जो कुछ गैर ब्राह्मण शताब्दियों से सहन करते आए थे उसकी तुलना में यह नगण्य था। दूसरे शब्दों में आज के ब्राह्मणों को अपने पूर्वजों के पापों का मूल्य चुकाना पड़ा। गैर ब्राह्मणों के साथ पक्षपातपूर्ण और ब्राह्मणों के विरुद्ध भेदभाव की नीति का तर्काधार प्रस्तुत करने वाला सामाजिक न्याय का सिद्धांत मोटे तौर पर यही था कि इस नीति का व्यवहार मद्रास प्रेसिडेंसी में तीसरे दशक में आरंभ हुआ जो चौथे और पांचवें दशक में शिखर पर जा पहुंचा। गैर ब्राह्मण आंदोलन की विचारधारा का एक अन्य महत्वपूर्ण सूत्र है स्वयं मर्यादे अथवा आत्मसम्मान। इसकी सुस्पष्ट स्थापना 1925 में ईवी रामास्वामी नायकर द्वारा हुई, पर इसके बीज पड़े थे बहुत पहले। सत्यशोधक समाज ने जिसकी स्थापना 1873 ईस्वी में महाराष्ट्र
में पूना के एक माली जाति के नेता ज्योतिराव फूले ने की थी। सत्य शोधक समाज का लक्ष्य था जाति भेदभाव बिना मानव शक्ति के महत्व पर बल देना। फूले विवाह कराने के लिए ब्राह्मण पुरोहित बुलाने के विरुद्ध थे और इस उद्देश्य से उन्होंने विवाह संस्कार को बहुत सरल बनाया था। भूतपूर्व कांग्रेसी रामास्वामी नायकर ने कांग्रेस से संबंध इसलिए तोड़ा क्योंकि उन्होंने उनके ऊपर मद्रास के अन्य गैर ब्राह्मणों पर लगातार प्रहार किए गए। उन्होंने अपना अलग दल बना लिया जिसे वे आत्मसम्मान आंदोलन कहते थे। यह आंदोलन घोर ब्राह्मण विरोधी था और विवाह तथा अन्य कृत्यों के लिए ब्राह्मण पुरोहितों को न बुलाने के लिए गैर ब्राह्मणों को उकसाता था। वह राजनीतिक तथा अन्य कार्यों के लिए केवल तमिल भाषा के प्रयोग पर आग्रह करता था। उसके अनुयायी अपने आप को द्रविड़ और एक सर्वसत्ता संपन्न स्वाधीन राज्य के निवासी मानते थे। यह आंदोलन ब्राह्मण विरोधी, उत्तर विरोधी, हिंदी विरोधी, संस्कृत विरोधी और अंत में ईश्वर विरोधी था। वह तमिल भाषा में से दीर्घकाल से प्रचलित संस्कृत शब्दों के बहिष्कार का और सार्वजनिक समारोहों में केवल तमिल गीतों की गाए जाने का जिसमें दक्षिण भारतीय संगीत में तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और संस्कृत के गीत समृद्ध हैं, प्रयास करता था। रामास्वामी नायकर ने 1945 में द्रविड़ कषघम की स्थापना की और 1949 में एक नए संगठन द्रविड़ मुनेत्र कषघम का जन्म हुआ। इस अलगाव का तात्कालिक कारण था नायकर द्वारा 70 वर्ष से भी अधिक उम्र में अपने से दसियों वर्ष छोटी एक युवती से विवाह के प्रश्न को लेकर नायकर और उनके प्रतिभावान तरुण सहायक सी अन्नादुराय के बीच मतभेद। नायकर के नेतृत्व में द्रविड़ कषघम सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्रों में ब्राह्मणवाद का विरोध करती रही और बीच बीच में ऐसे कार्यों को अभिव्यक्त होता था जैसे ब्राह्मण पुरोहितों को पर आक्रमण, हिंदू देवताओं विशेषकर गणेश की मूर्तियों का भंजन। द्रविड़ कषघम और द्रविड़ मुनेत्र कषघम दोनों द्वारा आर्य जातिवाद का प्रतीक समझे जाने वाले महाकाव्य रामायण के प्रतियों को जलाने पर और रेल स्टेशनों तथा अन्य स्थानों पर हिंदी अक्षरों पर तारकोल पोतने का प्रयास। द्रविड़ मुनेत्र कषघम अपने जनक द्रविड़ कषघम की भांति तमिल पृथकवाद का समर्थक है और उत्तर विरोधी तथा हिंदी विरोधी भी है। विचारधारा में वह बुद्धिवादी है और दक्षिण के आर्थिक विकास तथा सामाजिक और आर्थिक समानतावाद का समर्थक रहा है। अब वह ब्राह्मण विरोधी नहीं है। 1962 में आम चुनाव में मद्रास की स्वतंत्र पार्टी ने, जिसे बहुत से ब्राह्मण भूस्वामियों का सहयोग प्राप्त है, कांग्रेस को हराने के लिए द्रविड़ मुनेत्र कषघम से चुनाव समझौते किए थे। द्रविड़ मुनेत्र कषघम ने समृद्ध तमिल फिल्म उद्योग में भी प्रवेश पा लिया है और कषघम के सदस्य जिनमें से उसके संस्थापक अन्नादुरै भी शामिल हैं, फिल्म के लिए ऐसी कहानियां लिखते हैं जिनकी कथा वस्तु जाति प्रथा और ब्राह्मणों का विरोध तथा प्रादेशिक देशभक्ति होती है। हाल में इसके अखिल भारतीय संपर्क भाषा के रूप में अंग्रेजी को बनाए रखने के आंदोलन से इसे न केवल तमिलनाडु की सब जातियों में बल्कि अन्य सभी दक्षिण भारतीय राज्यों में भी समर्थन प्राप्त हुआ है। यह बात महत्वपूर्ण है कि पिछले वर्ग आंदोलन के सभी तत्व इस शताब्दी के प्रारंभ से ही मौजूद होने पर भी उसका विकास राजसत्ता के अंग्रेजों से भारतीयों के हस्तांतरण की संभावना से ही हुआ। 1909 में मोरले मिंटो सुधारों से प्रांतीय परिषदों के अधिकारों में कुछ वृद्धि हुई थी और जैसा कि पहले कहा जा चुका है, उसमें मुसलमानों का पंजाब में सिखों का भारतीयों, ईसाइयों, आंग्ल भारतीयों और यूरोपीय लोगों का अलग चुनाव क्षेत्र स्वीकार किया गया था। 20वीं शताब्दी के पहले दशक में भारत भर में राष्ट्रीय भावना और जाति भावना में तेजी से वृद्धि हुई। युद्धकाल में न केवल राष्ट्रीय भावना में उल्लेखनीय वृद्धि हुई बल्कि यह आशा भी बढ़ी कि युद्ध के बाद भारतीयों को और अधिक सत्ता सौंपी जाएगी। गैर ब्राह्मण आंदोलन के नेताओं को भय था कि उसे ब्राह्मण ही झपट लेंगे और वे देखते रह जाएंगे। वे इस बात का भरोसा चाहते थे कि उनकी भी लाभ हो और इसलिए वे सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व सर्वथा आवश्यक मानते थे, अन्यथा ब्राह्मणों का राज हो जाएगा और वे अधिकार का सबको दबाने के लिए उपयोग करेंगे। मद्रास आंदोलन के कुछ नेताओं ने साफ साफ इन भावनाओं को अभिव्यक्त किया, किंतु बंबई में आंदोलन के मराठा नेता कोल्हापुर के महाराजा ने राष्ट्रवादी दृष्टिकोण अपनाते हुए कहा कि वे होम रूल के समर्थक हैं, पर 10 वर्ष तक सांप्रदायिक अर्थात जाति पर आधारित प्रतिनिधित्व आवश्यक है, जिससे गैर ब्राह्मण जातियां अपने अधिकार पहचान सके। महाराजा के विचार मद्रास प्रेसिडेंसी संघ के गैर ब्राह्मण नेताओं के विचारों के अनुरूप थे, पर जस्टिस पार्टी के लोग अपने अधिक भयंकर नहीं तो अधिक तात्कालिक शत्रु ब्राह्मण से रक्षा के लिए खुल्लम खुल्ला अंग्रेजों का मुंह ताकते थे। यह सचमुच महत्वपूर्ण है कि ऐसी ही विचार सुदूर बंगाल में नाम शूद्र जाति की पत्रिका पताका में व्यक्त किया गया था। अब स्वयं अंग्रेज सरकार प्रशिक्षित लोगों की सहायता के लिए आगे आई है। वह सदा ही गरीबों की मदद करती रही है और दलित जातियों की आशा है। एनके बोस ने लिखा है कि नमा शूद्रों ने 1905 में बंग भंग विरोधी आंदोलन में भाग नहीं लिया था और 1907 में स्वदेशी आंदोलन में चरम उभार के दिनों में प्रतिनिधि नाम शूद्र नागरिकों का एक विशिष्ट मंडल लेफ्टिनेंट गवर्नर से मिला था और उसने अंग्रेजी राज बनाए रखने की प्रार्थना की थी। गांधी के प्रेरणादायक नेतृत्व और तीसरे तथा चौथे दशक के सविनय अवज्ञा आंदोलन ने ही जाति और प्रदेशगत मतभेदों के आर पार काटकर भारतीय जनता को राष्ट्रीयता की धारा में खींचा। 1910 से 1920 तक के दशक में भारत में अंग्रेजों के एक वर्ग ने ब्राह्मण को ही अपना चरम शत्रु मान लिया। सबसे पहले तो 1910 में वैलेंटाइन की रोल की पुस्तक भारतीय विक्षोभ इंडियन अर्नेस्ट प्रकाशित हुई, जिसकी मुख्य स्थापना थी ब्राह्मणवाद और पश्चिमी शिक्षा से भारत में अंग्रेजी शासन को गंभीर खतरा है। दूसरा था 1918 में रॉल एक्ट रिपोर्ट, भारत में क्रांतिकारी षड्यंत्रों की जांच के लिए नियुक्त समिति की रिपोर्ट का प्रकाशन, जो निश्चित रूप से यह सिद्ध करती थी कि बंबई में क्रांतिकारी षड्यंत्र सर्वथा ब्राह्मणों और अधिकांशतः चित्पावन ब्राह्मणों का था और भारत के अन्य स्थानों में भी क्रांतिकारी अपराधों को उकसाने और पूरा करने में ब्राह्मणों का बड़ा हिस्सा था। और अंत में ब्राह्मणों, विशेषकर मद्रास के ब्राह्मणों का श्रीमती एनी बेसेंट के होम रूल आंदोलन के साथ संपर्क था, जिसे मद्रास में जस्टिस पार्टी ने अपनी स्वार्थ साधन के लिए उछाला। राष्ट्रीयता के साथ ब्राह्मणों के संयुक्त होने का सबसे अधिक लाभ जस्टिस पार्टी ने उठाया, जो गंभीर विरोध के बावजूद गैर ब्राह्मणों के लिए सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व प्राप्त करने में सफल हो गई। सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व और कांग्रेस द्वारा चुनावों के बहिष्कार के कारण 1919 में भारत सरकार अधिनियम के अंतर्गत हुए चुनावों में जस्टिस पार्टी की विजय हुई और पार्टी के नेता हस्तांतरित विषयों के मंत्री बने। वे 1926 तक सत्तासीन रहे, जब स्वराज्य पार्टी ने उन्हें वहां से हटाया, किंतु प्रेसिडेंसी की राजनीति में तब तक उनका प्रभाव बना रहा जब तक 1935 के भारत सरकार एक्ट के अंतर्गत 1937 के चुनावों में कांग्रेस की धूम मचाने वाली जीत न हो गई। जस्टिस पार्टी सामाजिक स्थिति सुधारने और गैर ब्राह्मण जातियों की शक्ति बढ़ाने की समस्या में इतनी उलझ गई थी कि वह न केवल राष्ट्रीय भावना के प्रति उदासीन थी, बल्कि स्वराज्य के केवल ब्राह्मण अल्पमत के शासन की संभावना ही देखती थी। वह यह भी साफ समझती थी कि पश्चिम शिक्षा, सरकारी नौकरियां और राजसत्ता गतिशीलता के निर्णायक साधन हैं। पार्टी के एक वक्तव्य में कहा गया था, हम अपने सामाजिक, नैतिक और राजनीतिक अधिकारों का सरकारी नौकरियों में अपने हिस्से का दावा करते हैं, इसलिए नहीं कि हम सोचते हैं कि सरकारी नौकरियां गैर ब्राह्मण जातियों को मानव जाति में सबसे समृद्ध बना देगी। महान परंपराओं के उत्तराधिकारी होने के नाते उन जातियों को उसका उचित भाग मिलना चाहिए। सार्वजनिक शिक्षा और प्रशासन की दृष्टि से जस्टिस पार्टी की सबसे बड़ी सफलता यह थी कि दक्षिण भारत में हर जगह सरकारी नौकरियों में और इंजीनियरिंग, चिकित्सा तथा विज्ञान की शिक्षा में पिछड़ी जातियों को प्राथमिकता देने का सिद्धांत मान लिया गया। जातियों के निश्चित अंश कोटा की व्यवस्था कायम हुई। इसके परिणाम स्वरूप प्रायः बेहतर योग्यता वाले ब्राह्मणों की बजाय कम योग्यता वाले ब्राह्मणों को लिया जाने लगा। सुरक्षात्मक भेदभाव अथवा विपरीत भेदभाव इतनी दृढ़ता से स्थापित हो गया कि 1920 से मद्रास प्रेसिडेंसी में प्रत्येक 12 स्थानों में 5 गैर ब्राह्मण हिंदुओं को, 2 ब्राह्मणों को, 2 मुसलमानों को, 2 आंग्ल भारतीयों या ईसाइयों को और 1 हरिजनों को दिया जाता था। चिकित्सा तथा अन्य कॉलेजों में प्रवेश के लिए प्रत्येक 14 स्थानों में 6 गैर ब्राह्मण हिंदुओं के लिए, 2 पिछड़े हुए हिंदुओं के लिए, 2 हरिजनों के लिए, 2 ब्राह्मणों के लिए, 1 आंग्ल भारतीय या भारतीय ईसाई के लिए और 1 मुसलमान के लिए निर्धारित था। एक निश्चित अनुपात में विभिन्न जातियों में स्थानों का यह बंटवारा 3 दशकों तक चलता रहा और 1951 में ही मद्रास राज्य बनाम श्रीमती चंपकम दौरे राजन के मामले में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अवैधानिक घोषित किया गया। इस निर्णय के परिणाम स्वरूप संविधान धारा 15(4) में संशोधन किया गया, जिसके द्वारा यह अधिकार मिला कि वह सामाजिक अथवा शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े हुए वर्गों के नागरिकों के लिए अथवा अनुसूचित जातियों और जनजातियों की उन्नति के लिए कोई विशेष व्यवस्था कर सकता है। यह बात महत्वपूर्ण है कि संशोधित जातियों के आधार पर स्थानों के बंटवारे की अनुमति नहीं देता जैसा कि मद्रास में होता था। वह केवल जनता के दुर्बल अंशों के लिए स्थान सुरक्षित रखने को ही वैध ठहराता है। पड़ोस के भूतपूर्व रियासत मैसूर में 1951 से 1959 तक प्रत्येक 10 नौकरियों में से केवल 3 के लिए ही ब्राह्मण प्रतियोगिता में बैठ सकते थे और 1959 में मैसूर सरकार ने एक आदेश जारी करके सरकारी नौकरियों में और मेडिसिन तथा इंजीनियरिंग कॉलेजों की जगहों में से 75% को पिछड़ी हुई जातियों, 57% अथवा अनुसूचित जातियों और जनजातियां 18% के लिए सुरक्षित कर दिया। केवल 25% आम प्रतियोगिता के लिए खुली रह गई। मैसूर उच्च न्यायालय ने 1960 में घोषित किया कि वह यह नीति संविधान की धारा 15(4) का उल्लंघन करती है। मैसूर सरकार ने जनवरी 1960 में डॉक्टर आर नागन गौड़ा की अध्यक्षता में एक समिति पिछड़े वर्गों के वर्गीकरण की कसौटी निर्धारित करने के लिए नियुक्त की। समिति ने विचार के लिए जाति को इकाई माना और जाति का पिछड़ा होना या न होना इस बात से निर्धारित किया कि उसकी जनसंख्या के प्रत्येक 1000 पर सरकारी नौकरियों और हाई स्कूल के विद्यार्थियों में इसका प्रतिनिधित्व कितना है। इन कसौटियों के आधार पर लिंगायतों को आगे बढ़ी हुई जाति ठहराया गया और राज्य के स्तर पर उनके प्रमुख प्रतिद्वंदी उक्कलिंगो को पिछड़ी हुई जाति। यह बात पहले समिति की अंतरिम रिपोर्ट में कही गई थी। तुरंत लिंगायतों ने निर्णय की तीव्र आलोचना आरंभ की पर समिति पर कोई प्रभाव न पड़ा। उसने अंतिम रिपोर्ट में भी यह भी अपना वही निर्णय दोहराया, किंतु अंततः मैसूर सरकार को दबाव के आगे झुकना पड़ा और लिंगायतों को वांछित पिछड़ी हुई जाति का पद फिर से मिल गया। लिंगायत और उक्कलिग दोनों प्रमुख जातियों का पिछड़ेपन में कितना अधिक निहित स्वार्थ बन गया था, यह इस बात से प्रकट होता है कि न्यायालय की तीव्र निंदा के बावजूद मैसूर सरकार जातियों का निश्चित अंश बनाए रही है। इस भांति मैसूर उच्च न्यायालय के प्रतिकूल निर्णय में के 2 वर्ष बाद 31 जुलाई 1962 को मैसूर सरकार ने एक आदेश जारी किया जिसमें मेडिकल तथा इंजीनियरिंग कॉलेज में पिछड़े हुई जातियों तथा अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों के लिए 68% स्थान आरक्षित रखने की व्यवस्था थी। आदेश में 81 पिछड़ी हुई और 135 अधिक पिछड़ी हुई जातियों की सूची थी। 2 मास बाद इस आदेश को रद्द करते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने घोषणा की कि यह संविधान के साथ धोखाधड़ी है। निर्णय में कहा गया कि धारा 15(4) केवल जाति के आधार पर पिछड़ेपन के वर्गीकरण की अनुमति नहीं देती। इसके अतिरिक्त आरक्षण स्पष्ट ही अत्यधिक है क्योंकि वह सामान्य प्रतियोगिता के क्षेत्र को केवल 32% स्थानों तक सीमित करता है। दूसरे शब्दों में विशेष व्यवस्था ने मूलभूत नियम अवसर की समानता को इतना दुर्बल कर दिया कि उसका अधिकांश महत्व खत्म हो गया। जातिगत आरक्षण का सिद्धांत आंध्र और केरल में संबंध भी प्रचलित है। मई 1961 तक भी आंध्र प्रदेश में 65% सरकारी नौकरियों में पिछड़े वर्गों के लिए अनुसूचित वर्गों और जनजातियों सहित आरक्षित की जाती थी और यह आरक्षण उच्चतर स्तरों पर पदोन्नति में भी लागू था। केरल में 1958 तक 40% नौकरियां पिछड़ी समुदायों के लिए और 10% अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए आरक्षित होती थी। शिक्षा के क्षेत्र में 35% स्थान पिछड़े समुदायों के लिए आरक्षित थे। मैं पहले कह चुका हूँ, गैर ब्राह्मण आंदोलन किसान अथवा उच्चतर जातियों के धनी और किसी हद तक पश्चिमीकृत नेताओं द्वारा चलाया गया था और उनके तथा अनुसूचित संबद्ध जातियों के बीच बहुत बड़ी आर्थिक और सामाजिक खाई थी, किंतु ब्राह्मण विरोध उनके एकजुट होने का आधार था। यद्यपि यह गैर ब्राह्मण कोटि में आने वाला विविध तत्वों को सदा एक साथ रखने के लिए पर्याप्त न था, जातियों का अंश निश्चित होने के कुछ समय बाद पर्यायवाची और वन्य कुल क्षत्रिय जैसे कुछ जातियों को लगा कि जितना उनको मिला उससे ज्यादा मिलना चाहिए था। पर्यायवाची मद्रास की एक प्रमुख जाति है जिसकी संख्या राज्य की आबादी की 10% है और उत्तरी और दक्षिणी अरकोट के 2 जिलों में प्रभुता संपन्न है। उन्होंने मांग की कि प्रत्येक 5 गैर ब्राह्मण नौकरियों में से उनके लिए एक आरक्षित हो। दलित वर्ग भी असंतुष्ट थे। दलित वर्गों के में आने वाली जातियों की संख्या 1935 में 140 से कम करके 86 कर दी गई थी। शायद इस सूची में उन लोगों को निकाल दिया गया था जो उस कोटि में आते न थे पर सभी अभी तक फायदा उठाते रहे थे। यद्यपि 1937 के चुनाव में करारी हार के बाद जस्टिस पार्टी राजनीतिक जीवन से बाहर हो गई थी और उसका अर्थ गैर ब्राह्मण आंदोलन का अंत नहीं था। इस चिक ने कहा है कि उसने बाध्य होकर 1927 तक में एक प्रस्ताव स्वीकृत किया जिसमें सदस्यों को कांग्रेस में सम्मिलित होने की अनुमति दी गई थी ताकि मद्रास में उस संस्था में गैर ब्राह्मण भर जाएं। स्वतंत्रता और वालिक मताधिकार के साथ प्रमुख किसान जातियां इतनी शक्तिशाली हो गई कि सब राजनीतिक दलों को उनसे समझौता करना पड़ा। राज्य विधानसभाओं और मंत्रिमंडलों में तो इसका उनका अच्छा प्रतिनिधित्व था ही। पंचायती राज के प्रारंभ ने गांव, तहसील और जिला स्तर पर भी उन्हें सत्ता दे दी। राज सत्ता व्यक्ति और उससे समूह की हैसियत को बढ़ाती है। जिस किसी ने भी हाल के वर्षों में देहाती में लिंगायतों, उकलीगों, पाटीदारों और कल्लरों से बात की है वह इस बात की पुष्टि करेगा और राज सत्ता को आर्थिक लाभ में भुनाया जा सकता है, न केवल अपने लिए बल्कि अपने रिश्तेदारों, आसामियों और जाति भाइयों के लिए भी और उसके द्वारा नौजवान स्त्री पुरुषों के लिए भी उचित रोजगार, अच्छे वेतन और प्रतिष्ठा वाली नौकरियां जुटाकर उनका भविष्य निर्धारित किया जा सकता है। जातियों के आरक्षित अंश काम में सबसे अधिक महत्व के साबित होते हैं। आमतौर पर एक राज्य में प्रभु जातियां एक से अधिक होती हैं और उनके बीच राजसत्ता के लिए संघर्ष की उम्मीद ही की जा सकती है। आंध्र प्रदेश में कम और रेड्डी और मैसूर के लिंगायत और उकलिग जैसे संघर्ष के सुविदित उदाहरण हैं, किंतु अप्रभु जातियों की दृष्टि से प्रभु जातियों ने नई व्यवस्था में उपलब्ध अधिकांश सुविधाओं पर एकाधिकार कर रखा है। स्वभावतः अप्रभु जातियां कुंठित और कटु अनुभव करती हैं। आज मैसूर में अप्रभु जातियों के लोग अपने आप को गौर जातियों का कहते हैं और शिकायत करते हैं कि लिंगायत और ओकलिक सारी नौकरियों और हर प्रकार के व्यावसायिक कार्य के लिए आवश्यक लाइसेंस और परमिट बड़ी बेरहमी के साथ हथिया रहे हैं। यह भावना बहुत व्यापक है। यह बात नगन गौड़ा समिति की इस सिफारिश से ही प्रकट है कि पिछड़े वर्गों को अनुसूचित जातियों और जनजातियों के अलावा पिछड़े और अधिक पिछड़े की कोटियों में वर्गीकृत करना चाहिए जिससे अधिक पिछड़ों को न्यायोचित व्यवहार मिल सके। यह भावना केवल मैसूर तक सीमित नहीं है बल्कि केरल और मद्रास में भी पाई जाती है। 1 नवंबर 1956 को भाषावार राज्यों की स्थापना से प्रत्येक राज्य में अल्पसंख्यक भाषा भाषियों की राजनीतिक शक्ति बहुत कम हो गई। इस भांति मैसूर में आज राजनीतिक दृष्टि से उकलिग का अर्थ है इस प्रभु जाति का एक कन्नड़ भाषी सदस्य और अब उसमें तेलुगु भाषी रेड्डी सम्मिलित नहीं रहे। एक विडम्बना है क्योंकि मद्रास की भांति मैसूर में भी प्रारंभिक चरण में गैर ब्राह्मण आंदोलन का नेतृत्व अधिकतर तेलुगु, तमिल और मलयालम बोलने वालों में से और केवल हिंदुओं से ही नहीं मुसलमानों और ईसाइयों से भी आया था। पिछड़े वर्गों के बारे में 1950 में जो स्थिति थी उसको अब संक्षेप में इस प्रकार रखा जा सकता है। गैर ब्राह्मण जातियों में पश्चिमी संदर्भों में पिछड़ों की कोटि में गिने जाने वाली बड़ी व्यापक इच्छा थी। उधर प्रमुख जातियों का पिछड़ेपन में निहितार्थ स्वार्थ पैदा हो गया था। वहाँ शिक्षा, विशेषकर औद्योगिकी और चिकित्सा संबंधी शिक्षा प्राप्त करने का, प्रतिष्ठाजनक और अच्छी तनख्वाह वाली नौकरियां पाने का और वर्ग तथा जाति व्यवस्था में गतिशीलता का सबसे अच्छा उपाय था। अल्पसंख्यक जातियां अनुभव करती थी कि प्रभु जातियां सारी सुविधाएं उनसे छीन कर स्वयं हथियार ले रही हैं और राज्य सरकारें सचमुच पिछड़ी जातियों के हितों की रक्षा के लिए नए क्रियाविधियां बना चुकी थी या बनाने का विचार कर रही थी। यदि संविधान में अनुसूचित जातियों के हितों की रक्षा के लिए विशेष उपाय न किए गए होते तो टक्कर और भी तीव्रतर होती। इनके बिना अनुसूचित जातियों तथा दूसरों के बीच टक्कर जो गांव के स्तर पर बहुत तीव्र है, राजसत्ता और विभिन्न विशेषाधिकारों के लिए संघर्ष से ही और भी जोर की हो जाती। यहाँ यह कहना न्यायोचित होगा कि 1950 के बाद से पिछड़ेपन की समस्या के विषय में एक भिन्न रवैये की भी शुरुआत होती है और यह रवैया केंद्र और राज्य दोनों ही स्तरों पर प्रारंभ हुआ। भारत सरकार द्वारा नियुक्त पिछड़े वर्ग आयोग ने, जिसका उद्देश्य उन कसौटियों को निर्धारित करना था जिनके आधार पर अनुसूचित जातियों और जनजातियों के अलावा आबादी के अन्य अंश सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े हुए माने जा सके, 1955 में अपनी रिपोर्ट पेश की और उसके अधिकांश सदस्यों का मत था कि किसी व्यक्ति के पिछड़ेपन की सीमा जाति से निर्धारित होती है। उन्होंने 2399 जातियों को पिछड़ी हुई बताया और यह सिफारिश की कि उन जातियों को भी वे सब सुविधाएं मिलनी चाहिए जो अनुसूचित जातियों और जनजातियों को मिलती है। इस पर आयोग के अध्यक्ष काका कालेलकर ने राष्ट्रपति को रिपोर्ट भेजते हुए अपने पत्र में आयोग के मूलभूत निष्कर्षों को अस्वीकार किया। उन्होंने लिखा कि जब समिति का काम लगभग खत्म होने आया तब उन्होंने अनुभव किया कि उसके द्वारा सुझाए गए उपाय तो उन बुराइयों के से भी बदतर हैं जिनको दूर करना उनका उद्देश्य है। वे इस निश्चय पर पहुंचे कि आयोग की जांच की पूरी दिशा ही लोकतंत्र की भावना के प्रतिकूल है, क्योंकि लोकतंत्र की इकाई व्यक्ति है, परिवार या जाति नहीं। उन्होंने सिफारिश की कि राज्य उन सब व्यक्तियों को पिछड़ा हुआ और विशेष शिक्षा संबंधी तथा आर्थिक सहायता का अधिकारी माने जिनकी कुल पारिवारिक आय 800 रुपए सालाना से कम है, फिर उनकी जाति या संप्रदाय कुछ भी हो। आयोग ने पिछड़े वर्गों के लिए सरकारी नौकरियां आरक्षित करने की सिफारिश की थी। कालेलकर ने उसका भी विरोध किया। भारत सरकार ने भी आयोग की सिफारिशों को अस्वीकार किया और 5 वर्ष बाद 14 अगस्त 1961 को गृह मंत्रालय ने राज्य सरकार से जाति की कसौटी छोड़कर आय की कसौटी अपनाने का अनुरोध किया। राज्य स्तर पर मद्रास में 1955 से पहले की और यह इरादा जाहिर की कि क्रमशः प्राथमिक और माध्यमिक स्कूलों में सब गरीब छात्रों की फीस माफ करने की नीति अपनाई जाएगी। अपने इस लक्ष्य को पूरी तरह से फरवरी 1961 में प्राप्त कर सकी। 1959 में बंबई सरकार ने सब गरीब बच्चों की प्राथमिक और माध्यमिक स्कूलों में फीस माफ करने का निर्णय किया और आंध्र तथा मैसूर जैसे राज्यों ने भी उसके बाद यह नीति अपनाई। मैं दक्षिण भारत के पिछड़े वर्ग आंदोलन को मूलतः उन समूहों द्वारा गतिशीलता प्रदान करने के आंदोलन मानता हूँ जो पश्चिमीकरण में ब्राह्मणों से पिछड़ गए थे। शिक्षा, सरकारी नौकरियां और राजनीतिक प्रक्रियाओं में सहभागिता ऐसी गतिशीलता के लिए आवश्यक थी और शिक्षा बाकी दो को प्राप्त करने के लिए जरूरी थी। वह अनिवार्यतः लौकिक आंदोलन था। समानता की धारणा उसमें निहित ही थी। उसमें ऊपर उठने की इच्छुक जातियों में व्यापक होड़ पैदा कर दी थी और आत्मसम्मान आंदोलन को जन्म दिया और उसे ब्राह्मणों की सांस्कृतिक और सामाजिक प्रधानता तथा बहिष्कारवादी प्रवृत्ति पर हर प्रकार प्रहार करना पड़ा। पश्चिमीकरण में सम्मिलित आधुनिक राजनीति तथा अन्य प्रक्रियाओं में भाग लेने के कारण जाति व्यवस्था के कुछ महत्वपूर्ण परिवर्तन जिन पर मैं यहाँ विचार करूँगा, इस सिलसिले में जो बात सबसे पहले मेरे मन में आती है वह है जाति की उसके पारंपरिक स्थानीय और उदग्र सांचे से मुक्ति। स्थानीय सांचे में बल जातियों या जातियों की स्थानीय प्रशाखाओं की पारंपरिक निर्भरता पर था, जिसका वास्तविक अर्थ होता था सेवक और दस्तकार जातियों के, आसमियों के बहुत से घरों की भूस्वामी प्रभु जातियों के प्रत्येक संरक्षक घर पर निर्भरता। नए शैक्षिक आर्थिक और राजनीतिक अवसरों के उत्पन्न होने से क्षैतिज एकीकरण में वृद्धि हुई। यहाँ मैं यह कैसे हुआ इसके बजाय गतिशीलता के लिए इसके महत्व की चर्चा करूंगा। व्यापक क्षेत्र में फैली हुई जाति की अपनी प्रशासकाओं के बीच विभिन्नता की उपेक्षा की प्रवृत्ति होती थी। नीच जाति की श्रेणियां, जब मैं उन्हें जाति की विभिन्न प्रशाखाएं कहता हूं तो मैं यही अंकित कर रहा हूं कि जाति के शिक्षित लोग उन्हें कैसे देखते थे। वास्तव में मुझे तो शक है कि बड़ी किसान जातियों के विभिन्न सदस्यों में इस बात पर मतभेद होता होगा कि कौन उनकी जाति का है कौन नहीं। उदाहरण के लिए मैसूर मांड्या जिले की ओक्कलिग जैसी जाति में यह संभव है कि जाति का एक बुजुर्ग देहाती अनपढ़ सदस्य नोनबा हल्लीकार हालू और मोरसू शाखाओं को ओक्कलिग ही न माने। उसके लिए तो यह कोई 25 मील के घेरे में रहने वाले ओक्कलिग ही उसकी सामाजिक परिधि में आते हैं, पर एक ओक्कलिग वकील या डॉक्टर सब शाखाओं को ओक्कलिग मानेगा और वह सुदूर पश्चिमी जिले सिमोगा के शहरी और शिक्षित ओक्कलिग के बेटे से अपनी बेटी का विवाह करने को तैयार हो जाएगा। स्पष्ट ही यहाँ यह वर्गगत तत्व भी निहित है, पर यह बात निर्विवाद है कि क्षैतिज एकीकरण हो रहा है और एकीकरण में एक निर्धारक तत्व है भारतीय समाज का बढ़ा हुआ राजनीतिकरण। रिजले जैसे जाति के पूर्ववर्ती अधिताओं ने भी जाति की विखंडन की प्रकृति की ओर ध्यान आकर्षित किया है। पारंपरिक भारत में विखंडन प्रमुख प्रक्रिया रही जान पड़ती है, जबकि आज प्रवृत्ति उलट गई है और विखंडन का स्थान एकीकरण ने ले लिया है। और जैसे वेतिल ने कहा है, एकीकरण मनमाने ढंग से नहीं बल्कि पारंपरिक संबंधों की को ध्यान में रखकर ही होता है। बेतिल ने यह भी कहा है कि ऐसा एकीकरण प्रायः बड़े बड़े खंडों के बीच विशेषकर राजनीतिक क्षेत्र में दरार के बढ़ते जाने से भी संबंधित होता है। मैंने इसे क्षैतिज एकीकरण कहा है, पर क्षैतिज शब्द पूरी तरह से उपयुक्त नहीं है, क्योंकि इसमें संबद्ध इकाइयां एक दूसरी को समान नहीं मानती और प्रत्येक का यह भाव रहता है कि वह दूसरों से श्रेष्ठ है। यह कहना अधिक उपयुक्त होगा कि ढांचे में पास पास की इकाइयां एक बड़ी इकाई का अंग बन जाती हैं। अधिकांश मामलों में बड़ी इकाई अभी भी प्रकट होने की प्रक्रिया में होती हैं और विभिन्न इकाइयों में पश्चिमीकृत अभिजन उन्हें पास ला रहे होते हैं। प्रत्यक्ष अनुसंधान के अभाव में यह कहना संभव नहीं है कि क्षैतिज एकीकरण में वृद्धि सब जातियों में एक सी हुई है, अथवा कुछ में कम कुछ में अधिक। वह निश्चित रूप से प्रभु किसान जातियों सहित उच्च जातियों में तो हो रही है। अनुसूचित जातियां राजनीतिक उद्देश्यों के लिए तो पास आई हैं, पर यह ज्ञात नहीं है कि उसके बाद सामाजिक और सांस्कृतिक क्षेत्रों का विस्तार किस हद तक हुआ है। दस्तकार और सेवक जातियां आमतौर पर संख्या में कम होती हैं और राज्य की राजनीति में कहीं भी प्रमुख नहीं है। यह संभव नहीं है कि वे क्षैतिज एकीकरण में वृद्धि की आधुनिक प्रवृत्ति से प्रभावित हुई है। जाति के संदर्भ में हाल में एफजी वेली और वेतिल ने विवेचन किया है। वेतिल ने लिखा है, इस तथ्य का कि जाति खंडी व्यवस्था है, यह अर्थ है और सदा रहा है कि लोग विभिन्न संदर्भों में अपने आप को विभिन्न श्रेणियों की इकाइयों का सदस्य समझते हैं। एक स्मार्त अपने को एक ही वैष्णव में सामने स्मार्त समझता है और गैर ब्राह्मणों के सामने ब्राह्मण। यह मानने का कोई कारण नहीं कि यह कोई बात नई है। नई बात यह है कि दलीय राजनीति के कारण ध्यान अब संकुचित समूहों की बजाय बड़े समूहों पर केंद्रित होने लगा है। यह सच है कि राजनीतिक शक्तियों ने जो किंतु दलीय राजनीति से अधिक व्यापक हैं, क्षैतिज एकीकरण को उकसाने में योग दिया है, पर केवल उन्होंने ही ऐसा नहीं किया। नागरीकरण, बढ़ी हुई स्थान मूलक गतिशीलता, पश्चिमीकृत पश्चिमीकृत जीवन शैली और आधुनिक विचारधारा का भी अपना योग रहा है। सहगमन के विशेष संदर्भ में जो जाति की पहचान के लिए इतना महत्वपूर्ण है, दहेज प्रथा के कारण लोग पारंपरिक इकाई के बाहर वर खोजने के को बाध्य हुए हैं। दहेज में बड़ी बड़ी रकमों की मांग और बहुत बार स्वयं दहेज प्रथा, बढ़े हुए मुद्रा प्रसार और उसके कारण पश्चिमी शिक्षा और नौकरी के अवसरों की उपज है। भारतीय समाचार पत्रों में विवाह संबंधी विज्ञापन यह प्रकट करते हैं कि किस तरह शहरी पश्चिमीकृत भारतीय उपयुक्त वर कन्या की तलाश में पारंपरिक रुकावटों की उपेक्षा करने को तैयार है। आधुनिक भारत की जातियां छात्रावास बनाना, सहकारी आवास व्यवस्था और बैंकों की स्थापना आदि बहुत से कार्य करती हैं और राजनीतिक क्षेत्र में अलग अलग हितों के प्रतिनिधि समूहों का काम करती हैं। गांव और प्रदेश के पारंपरिक संदर्भ में जाति समूहों के कार्य से यह एकदम भिन्न है। स्थानीय ग्रामीण अर्थव्यवस्था और समाज में जातियों में जो पारंपरिक निर्भरता है की विशेषता पाई जाती थी, और यह याद रखना उचित होगा कि इस पारंपरिक निर्भरता के पीछे प्रभु जाति और मुखिया की उत्पीड़क शक्ति छिपी रहती है। उनका स्थान प्रतिद्वंदी समूहों की सत्ता की होड़ ने ले लिया है। कैथलीन गफ के अनुसार यह भी जाति के विघटन का ही कारण एक लक्षण है, और लीच के अनुसार यह जाति के सिद्धांतों के प्रतिकूल आचरण है। बेली का मत है, उदयीमान इकाइयां जाति व्यवस्था में सक्रिय न होने पर भी शिथिल रूप में जाति ही है। नूर एलमैन और बेतिल भी इन इकाइयों को जातियां मानते हैं, और बेतिल ने खंडी व्यवस्था अर्थात जाति के विभिन्न स्तरों के बीच निरंतरता पर बल दिया है। यदि पारंपरिक ग्रामीण समुदाय और छोटी रियासत को मान समझा जाए तो जाति श्रेणियों अथवा संबद्ध जातियों के बीच बनते हुए नए संबंध और राजसत्ता और आर्थिक सुविधाओं के लिए तीव्र प्रतियोगिता नई घटना जान पड़ती है। चाहे वे सहगामी क्षेत्र निर्धारित करने जैसे कुछ पारंपरिक कार्य भी अभी करती हों, किंतु जाति में ये परिवर्तन 150 वर्ष से होते पश्चिमीकरण के बिना नहीं हो सकते थे। और अब जब मैं पश्चिमीकरण कहता हूँ तो उस शब्द में निहित सारी शक्तियों को शामिल करता हूँ। बड़ी बड़ी और शक्तिशाली जातियों का उदय, उनमें से प्रत्येक के भीतर धंधों की बड़ी भारी विविधता, राजनीतिक और आर्थिक सत्ता के लिए जातियों के बीच तीव्र प्रतियोगिता, समानतावादी विचारधारा का प्रसार और बढ़ती हुई राजनीतिक तथा सामाजिक सक्रियता, इन सबसे मूलभूत प्रकार के परिवर्तनों के होने का संकेत मिलता है। उसे सामाजिक एक स्तरीकरण का एक आत्मबद्ध व्यवस्था से उपयुक्त व्यवस्था की ओर सामान्य गति मात्र नहीं कहा जा सकता। एक तो जैसा हम पहले देख चुके हैं, पारंपरिक व्यवस्था सर्वथा आत्मबद्ध भी न थी और व्यक्ति तथा समूह दोनों के लिए गतिशीलता संभव थी। दूसरे स्वाधीनता के बाद ये वैयक्तिक और पारिवारिक गतिशीलता की संभावनाएं बहुत अधिक बढ़ गई हैं। फिर भी इस गतिशीलता में जाति बड़े सूक्ष्म और अप्रत्यक्ष रूप से अब भी महत्वपूर्ण रहती हैं।